कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में परम भागवत श्री प्रहलाद महाराज की पंचम स्कंद में नरसिंह देव की प्रार्थनाओं का श्रवण वर्णन सुबह से आरंभ किया है और अब श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के प्रिय ब्रह्मचारियों के रसास्वादन के लिए प्रहलाद महाराज की इस महाभागवत की शिक्षा के पांचवें अध्याय के अठारहवें अध्याय पांचवें स्कंद के अठारहवें अध्याय का दसवां श्लोक पाठ करेंगे। मागार दारात्मजावित बंधुषो संगो यदि स्याद भगवत प्रियेषु न यः प्राणवित्ताय परितुष्यत्यात्मवान् सिद्ध्यत्याधुरां न ततीन्द्रियप्रियः। मागार्धारात्मजवित्त बंधुषो संगो यदि स्वाद भगवत प्रियेषु न यः प्राणवित्ताय परितुष्यत्यात्मवान्
सिद्ध्यत्या अधुरायन तदिन्द्रिय प्रिया मागारदार आत्मजवित्त बंधुषो संगो यदि स्याद भगवत प्रियेशो नः यः प्रियाण वित्ताय प्रतिप्रेत प्रतितुष्टः आत्मवान् सिद्ध्यति अधुरान्नः ततीन्द्रियप्रियः मागारदारात्मवित्तबन्धुषु सन्नो यदि स्या भगवत् प्रियेषु नः प्राणवृत्त्यापरितुष्टात्मवान् गङ्गो यदि स्यात् भगवत् प्रियेषु यः प्राण विद्या परितुष्टात्मवान् सिद्ध्याधुरान्नः ततीन्द्रियप्रियः
आत्मवान् का क्या अर्थ है? अपने बुद्धि से भाई, जिसके पास धन होता है उसको क्या कहते हैं, और जिसके पास आत्म साक्षात्कार है उसको क्या कहेंगे? आत्मवान। और जिसके पास भग है वो भगवान, और जिसके पास अघ है वो अगवान। पापी को कहते हैं अगवान, अघ वाला अगवान, भग वाला भगवान, आत्म वाला आत्मवान, धन वाला धनवान, और जो भक्तों के संग है वो भाग्यवान। ठीक है, तो ये आत्मवान की परिभाषा बहुत सरल है। जिसका मन शांत है और आत्म साक्षात्कार किया है। प्रभुपाद ने दो अर्थ लिखे हैं, देख लीजिए। वन हुज माइंड इज अंडर कंट्रोल एंड हु इज सेल्फ रियलाइज इज कॉल्ड आत्मवान। ठीक है, ऐसे भगवत गीता का एक श्लोक बोलो जिसमें आत्मवान है। आत्मवान है मतलब जिसमें आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति का लक्षण है। आता है किसी को ध्यान में? हाँ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् मनोधन, उसमें आत्मवान है। आत्मना आत्मवान तुष्यति, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् मनो, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है, जिसको अपने आत्मा में संतुष्ट है, आत्म तृप्त आत्म संतुष्ट आत्म। एक श्लोक ऐसा है, आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में तृप्त है, आत्मवान उसको कहते हैं जिसको कुछ और दुनिया में नहीं करना है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त है। ये दूसरे, मेरे ख्याल दूसरे अध्याय में ये एक श्लोक है। कौन सा है, निकाल के बेचारे को पढ़ लो ना। हरे कृष्णा, नहीं ना ना ना, हाँ, आत्म तृप्तस्य आत्म संतुष्ट तस् कर्म न विद्यते, उसके लिए कोई कर्म नहीं है जो आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में तृप्त है। दो श्लोक साथ में है, त्रिगुण विषय निस्तरगुण भव अर्जुन निर्गुण आत्मस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, ये भी आत्मवान है। बहुत अच्छा, ये है शैली अध्ययन करने की। एक शब्द यहां मिला, प्रभुपाद के आप कोई भी तात्पर्य पढ़ेंगे, एक शब्द के ऊपर दो ही से और श्लोक ढूंढ के
कहीं से लाके उधर डालेंगे और उसकी पुष्टि करेंगे। तो ये आत्मवान अब जैसे आपको यहां मिला ऐसे और जगह मिलेगा। इसमें क्या है, त्रय विद्या त्रिगुणिया विषय वेदा निस्त्रगुणो भव अर्जुन, तीनों वेदों वेद तीनों गुणों के अंतर्गत कर्म कांड की बात करते हैं, तुम तीनों गुणों से ऊपर आ जा अर्जुन, फिर निर्द्वंद द्वंद्वों से उठ जा ऊपर, ओके निर्द्वंदो आत्म नित्य सत्व स्थो, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, सत्व भगवान है, सत्व माने भगवान में स्थित होना, परम सत्य भगवान नित्य सत्व स्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम यहां है, तुम योग क्षेम में चिंता मत करो, तुम आत्मवान करो बन जाओ, तो योग क्षेम में चिंता कौन करेगा, योग क्षेम वहां मियां, ये छो योग क्षेम वहां ले जाओ, योग क्षेम वहां मियां, जो आत्मवान है उसका योग क्षेम भगवान उसकी चिंता करता है, उसको खुद करने की जरूरत नहीं। तो इसमें यहां क्या लिखा है, आत्मवान कौन है, जो शरीर के निर्वाह में संतुष्ट है, उसको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या लिखा है, यह प्राण वित्ताय परितुष्टो, प्राण वित्ताय मतलब प्राण चलता रहे, इतना धन चाहिए, वित्त धन है ना भाई, वित्त का अर्थ होता है धन, इतनी जरूरत है जिसमें प्राण चलता रहे, उसमें परिसंतुष्ट शब्द है, परितुष्ट प्रकृष्टेण रूपेण तुष्ट, परिपूर्ण संतुष्ट है, कुछ भी नहीं चाहिए, पूरी रूप से संतुष्ट है, किसमें आजीविका चल रही है बस, उसका उद्देश्य क्या है, आत्मवान बनना। तो ये भक्त की पहली परिभाषा है कि उसको रस आत्मवान बनने में आता है, इंद्रियावान नहीं, एक भगवत गीता में शब्द है इंद्रिया रामो आत्मा रामो, इसमें ये है आत्मा राम और इसके नीचे वाला है इंद्रिया राम, नीचे वाली लाइन में कौन है, इंद्रिय प्रिय शु मतलब इंद्रिया रामो, ये भगवत गीता में दूसरा श्लोक है इंद्रिया राम, उधर है इंद्रिया रामो मैंने इंद्रिया में रमण करने वाला, और आत्मा रामो जो आत्मा में रमण करता है। तो ये दो पक्ष है, एक आत्मा रामो एक इंद्रिया रामो, एक आहा, तो जो यहां क्या है नीचे कौन है, आत्मवान जो है वो उतने में संतुष्ट है जिसमें शरीर का निर्वाह हो जाए, प्राण वित्ताय प्राण वित्ताय, प्राण वित्ताय मतलब काम चल जाए, शरीर चलना चाहिए, उसमें परितुष्ट है क्योंकि आत्मवान है। एक महात्मा कहीं सत्संग करने गए थे तो स्वपाकी थे, खुद अपना पका के खाते थे, वो चार लाके देते थे पकाते थे, तो आखिरी दिन कथा पूरी हुई तो जो कथा कराई थी उसने कहा महाराज आपने क्या पकाया, थोड़ा हमको प्रसाद दो, प्रसाद दिया तो उसमें नमक तो था नहीं जो था, तो महाराज इसमें नमक नहीं, बोला पता नहीं आपने जो ला दिया हमने खा दिया, हम नमक चखने के लिए यहां नहीं आई, हम तो कथा करने आए भाई, नमक के स्वाद के लिए यहां नहीं आए कि तुष्ट में संतुष्ट इसमें होगा कि खाना मिलेगा, इसलिए नहीं आया हूं मैं, कथा करने आया हूं, आपको नमक का पता है, हमको तो पता नहीं आपने जो दिया गर्म किया खाया, मेरा प्राण चल रहा है बस। अब समझ रहे, ये आत्मवान की परिभाषा ये है कि भाई मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे सुविधाएं चाहिए, मैं इसलिए आया हूं कि कथा सुनानी। उसका जो उदाहरण ये है कि भाई मैं इसमें क्या है, उससे मुझे क्या लेना है, असल में खाने से गाड़ी तो चल जाती है आटा पानी में घोल के पिए तो भी, लेकिन ये टंग है जो परेशान करती है, इसको चाहिए टेस्ट, बाकी अंदर में तो मुट्ठी भर आटा पानी में घोल के पियो तो भी काम चलेगा, प्राण चल जाएगा। ये सिंपलिसिटी की बात ये है, प्राण चलना चाहिए का मतलब जितनी जितना जरूरी है शरीर को उतना आहार मिलना चाहिए, लेकिन ये जो टंग है बहुत इसने टन्नू के हिसाब से खाया है, लेकिन 5 मिनट के बाद वैसी जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं है? बहुत प्रभुवाज मछली टंग से सिर्फ जबान से पकड़ी जाती है, केवल एक चखने के चक्कर में कील में फंसती है और अपना प्राण देती है। तो ये उस दृष्टि से आत्मवान वो है जो टेस्ट के पीछे नहीं है, मेन बस शरीर चलना चाहिए। बहुत बहुत बड़े बहुत बड़ी गंभीर विषय है। प्रहलाद महाराज इस बात को बहुत सरल बना के कह रहे हैं, ठीक है। अब ये आत्मवान, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब पहली लाइन पे आते हैं, मां माने न, मां आगार। आगार किसे, आपने देखा है बसों के ऊपर क्या लिखा होता है, कौन से आगार का बस है, मतलब इसका डेपो, कौन से डेपो से बस निकली है। तो आगार, मानव का आगार क्या है, घर। आगार का मतलब जो डेपो जहां से सब निकलते हैं तो आगार का अर्थ है घर। आगार वो जगह है जहां बेगार में काम करना पड़ता है मां आगार। वैसे ज्योतिष में किसी को कोई अच्छा स्टार नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, इसके इसके क्या खराब है, ग्रह खराब है, क्या बोलते हैं। और घर को क्या बोलते हैं, ग्रह। माने जो घर में रहा उसको ग्रह लगा। आगार का मतलब जिसके अंदर ग्रह, आग्रह दुराग्रह सब ग्रह उसी के अंदर रहते हैं, तो जहां ग्रह होते हैं उसको ग्रह, माने इसका अर्थ है जहां ग्रह हो, जहां जिस ग्रहों से बचा न जाए उसको आगार कहते हैं, ठीक है। मां आगार, आगार के अंदर कौन कौन से ग्रह हैं, दारा पहला ग्रह दारा उसका नाम एक ग्रहणी है, आपको मालूम है, सर्प से सर्पणी ज्यादा विषीली होती है, बाण से बाणी ज्यादा घायल करती है, और ग्रह से ग्रहणी ज्यादा खतरनाक होती है। भाई ग्रह क्या करेगा, भाई घर तो भाई मिट्टी का है, वो झगड़ा थोड़ी करेगा, ग्रहणी की समस्या है। और जब तक साधु है संत है तो पेड़ के नीचे रहे, वो ग्रहणी आई तो ग्रह चाहिए और ग्रह लगा। तो आगार में कौन कौन से ग्रह हैं, दारा, दारा मतलब जो आज जो दिन के दिखाए तारा अरे कृष्ण, दिन में तारा नहीं दिखते हैं वैसे, लेकिन दिख जाते हैं उसको। और दूसरा आगार में क्या है, इस डेपुट में और क्या है, ग्रह कौन सा है, आत्मजा। आत्मजा मतलब अपने से पैदा किया हुआ, मतलब अपने ही किए हुए को भुगतना भाई मैंने ही पैदा किया तो मुझे भुगतना पड़ेगा। आत्मजा अपने से उत्पन्न हुआ, ये संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते, संस प्रज दुख योनि, ये जन्म कहां कौन लेता है इससे, संस प्रसजा भोगा, जो भोग इंद्रिय तृप्ति से होता है उसके गर्भ में दुख जन्म लेता है। तो दुख का जन्म का स्थान कौन सा है, संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते, दुख की योनि है। इसको बिजनेस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, इंद्रिय तृप्ति करो दुख मुफ्त में आपके गले में पड़ेगा, यू कैन नॉट अवॉइड दिस, बस बाय वन गेट वन फ्री, बहुत सरल। और तीसरी क्या चीज है, ग्रह कौन सा है घर में, वित्त, वित्त का मतलब धन। और अब ये आखिरी ग्रह बंधुषु, बंधु से ही बंधन होता है, संबंध बंधन, बंधु बंधन, तो ये बंधन है सारे। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, संग आसक्ति। अब देखिए बहुत ध्यान से इसको एनालिसिस करना चाहिए प्रचार में, ये सब चीजें बंधन का कारण है, ऐसा नहीं, इन चीजों में आसक्ति बंधन का कारण है। ये चीजें बंधन का कारण नहीं है, इनमें आसक्ति बंधन का कारण। ऐसा ही एक श्लोक अन्य स्थान भागवत में प्रार्थना है, ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है और वो प्रार्थना है श्री वृत्त की। एग्जैक्टली ऐसा श्लोक है, निकालिए 6:11-27 सिक्स कैंटो 11th chapter 27th verse। मतो मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, ये वो पहले कहता है मुझे ये मिलना चाहिए, वो ये बाद में कहेगा, वो सिर्फ इतना अंतर है उसमें। दूसरी लाइन में क्या बोल दिया, नहीं क्या नहीं होना चाहिए लास्ट में, यही चीजें हैं कि नहीं, दर आगार साता ये सब है, कुछ नहीं है। तो माया मतलब ये सब तुम्हारी माया है, क्या है तुम्हारी माया, क्या है आत्मा, आत्मा जा दारक गेह, यहाँ आगार को गेह कर दिया, हाँ गेह आसक्त चित्त से, उसमें समस्या कौन सा वर्ड है, आसक्त चित्त से, कॉन्शियसनेस हमारी चेतना उसमें आसक्त नहीं होनी चाहिए। ये खराब नहीं है, आसक्ति खराब है। अब एक प्रश्न इसका ऐसा है, इसको समझना ऐसा चाहिए, भाई हम चलते हैं फिरते हैं तो क्या हमारे आंखें बंद होती है, खुली होती है, तो कितनी चीजें देखते हैं रोज, जो हमारा जिसमें हमारी आसक्ति नहीं, जिसमें चपका नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप मानो ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, हजारों लाखों लोग उतर रहे चढ़ रहे हैं, लेकिन एक लाल कपड़े वाला दिख जाए तो आपकी आंख उसमें चपकती है कि नहीं चपकती है? कौन है ब्रह्मचारी, कौन से मंत्र का, तो वो उसमें चपक गया तो फिर आपकी अटैचमेंट हो गई तो आपका दिमाग काम करेगा, नहीं तो कई लोग जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां चपके वहां फंसे, देखना मना नहीं है, सुनना मना नहीं है, लेकिन वहां अटकना मना है, चपकना मना है, उसमें आसक्ति मना है। आसक्ति बंधन का कारण है, चीजें बंधन का कारण नहीं है, उन चीजों में आसक्ति बंधन का कारण है। अब कहते हैं भाई ये तो आसक्ति कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बगैर आसक्ति के कोई रह सके। तो कहते अगर ये आसक्ति होनी है, ये मेरा संग होना है, तो किसके साथ हो, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, संगो यदि, अगर मेरे को कहीं आसक्ति करनी पड़े, कहीं मुझे संग लेना पड़े, तो फिर किसका चाहिए मुझे, स्याद भगवत प्रियेशु न, तो फिर हमारे को भगवान के प्रिय भक्तों का संग मिले। अब इसको अगर जहां भगवान के भक्त है, चाहे कैसा भी वातावरण है, तो कोई समस्या नहीं है, तो संग तो इस दुनिया में करना ही पड़ेगा। तो किसका संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं व्यवस्थितो। ये भगवद गीता में इसके लिए शब्द क्या है, व्यवस्थितो, राग द्वेष व्यवस्थितो, राग भी रहेगा द्वेष भी रहेगा, लेकिन उसको व्यवस्थित करो। व्यवस्थित करो का मतलब क्या है, भाई बाथरूम की चीजें बाथरूम के रखो, किचन की चीजें किचन में रखो, इसको बोलना है व्यवस्थित करना। भाई जो खाने की चीजें हैं, भाई मिठाई का लड्डू है वो रसोई में रखो, और शेविंग का किट है वो किचन जो जाके टॉयलेट में रखो, इसको एक दूसरी जगह मत रखो, ये गड़बड़ हो जाएगी। भाई द्वेष किससे करना है, बुरी चीजों से द्वेष करना है, करना ही पड़ेगा ना, नशे से द्वेष करना है, बुराई से द्वेष करना है। और आसक्ति कहां करनी है, आसक्ति भगवान के भक्तों में करनी है, हरि कथा में करनी है, हरि कीर्तन में करनी है। तो व्यवस्थित का मतलब जो जहां रखनी है वहां रखो, उसको एक को दूसरी जगह से ऐसे मिक्स मत करो, व्यवस्थित करना है उसको, तो आसक्ति रहेगी। घर में न रहे, भगवान के भक्तों में रहे, ये इनका प्रार्थना का प्रहलाद महाराज का उद्देश्य है। और यही वृत्तासुर की प्रार्थना है आखिरी चतुर्श्लोकी की, कि उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम। और उसमें तो उन्होंने एक बात और कही है कि मैं अपने कर्मों के कारण कहीं भी मुझे जन्म लेना पड़े तो मुझे घर गृहस्थी में आसक्ति माया में फंसने मत देना, आपके प्रिय भक्तों का संग देना। ये द्वरतासुर की प्रार्थना है। सो यहां प्रहलाद महाराज कहते हैं, इन चीजों में मेरी आसक्ति न हो, मेरी आसक्ति हो तो भगवत प्रियेशु न मतलब हमारी स्याद हो जाए, भगवत प्रियेशु भगवान के प्रिय भक्तों में, भगवत प्रियेशु जो भगवान के प्रिय हैं, जैसे कृष्ण पृष्ठाय भूतले, जो कृष्ण को प्रिय है। ये प्रभुपाद की प्रणति में क्या है, कृष्ण पृष्ठाय, पृष्ठाय का मतलब प्रिय। तो भगवत प्रियेशु जो भगवान को प्रिय हैं, उनसे के साथ हमारी आसक्ति हो, उनके साथ संग हो। और फिर यह प्रयाण वितेशु प्रतुष्ट आत्मवान सिद्ध्यते अधुरान, एकदम सिद्ध हो जाएंगे। कौन ऐसे कौन कर सकता है ये कार्य करना, किसके लिए संभव है, जो गृह आत्मजा दार वित्त बंधु में आसक्त न होकर भगवत प्रिय भक्तों में आसक्त रहेगा, वो कौन हो सकता है। तो कहते हैं प्राण वित्ताय परितुष्ट आत्मवान, जो जिसको कोई जरूरत है नहीं, जरूरत से ज्यादा आवश्यकता ही इतनी है, वो तो आत्मवान है। आत्म साक्षात्कार उसका मुख्य उद्देश्य है और उसमें संतुष्ट है जिसमें उसका निर्वाह चल जाता है, जीवन का निर्वाह चलना चाहिए। सिद्ध, हाँ सिद्ध अधूरा, एकदम सिद्ध हो जाएगा वो, एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। सिद्ध का मतलब परफेक्शन, परफेक्ट सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध वैसे किसको कहते हैं, आपने पुराने जमाने में चावल जब घर में पकाते थे ना, तो एक चावल निकाल के उसको ऐसे देखते थे, बोलते चावल सिद्ध हो गया। आपने सिद्ध की परिभाषा समझते हैं, जो चावल पूरा गल जाए उसको बोलता है चावल सिद्ध हो गया। मालूम है ये शब्द बोले, सुना है कभी, हा? जब पकाते थे ना पहले, तो माता जी एक निकाल के ऐसे रसोई ऐसे देखता है, चावल सिद्ध हो गया। तो चावल को हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, भात, क्या बोलते हैं, जहां से भात निकला है संस्कृत में, वहां से भक्त निकला है। भक्त की भी रूट वही है। भक्त किसको कहते हैं, जो चावल की तरह पूरा सिद्ध हो गया है। जो पूरा सिद्ध है का मतलब उसके अंदर कोई कणी नहीं रही हुई है, थोड़ी सी भी कच्चा रह गया तो सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ तो खाया नहीं जा सकता है। चावल की कणी और भाले की अणी बहुत घाव करती है, पेट में बहुत दर्द करती है। चावल की अणी का मतलब कच्चा हुआ चावल थोड़ा भी रह जाए, और भाले की अणी का मतलब आगे वाला हिस्सा जो स्पीयर का है, बहुत दर्द करता है। और भक्त भी जिसमें थोड़ी सी अणी रह गई अभी तक भात की तरह पक्का नहीं है, वो बड़ा गड़बड़ है। तो इसका ओरिजिन जो शब्द की है, वो सिद्ध का मतलब है जो असल में निम्रता युक्त तृणादपि सुनिश्चिन, ये सिद्ध के लक्षण है। जो सिद्ध, सिद्धि अधूरा मतलब एकदम सिद्ध हो जाएगा, एकदम सिद्ध हो जाएगा। तो ये सिद्ध के लक्षण कहे कौन से है, तो एकदम कहना चाहिए तृणादपि सुनिश्चिन तरोरपि शरणो अमाने न मान देना कीर्तन्य सदार, ये सिद्ध है। ये सिद्ध का अधूरा, अधूना, अधूरा क्या, अधूना क्या है, एकदम कौन हो गया, इसका मतलब जिसका जीवन भगवान के भक्तों के संग की अभिलाषा करता है और बहुत सिंपल जीवन है। इसको सामान्य भाषा में कहते सादा जीवन, बहुत सादा और सरल जीवन। ऐसी परिभाषा भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में कैसे लिखी हुई है, क्या पेड़ों ने फल देना छोड़ दिया, क्या कपड़े फटे हुए रोड के ऊपर नहीं है, क्या हाथ नहीं है उसके ऊपर सर रख के सो, तकिए की जरूरत है क्या, आपने सुना। ये असल में आत्मवान भक्त की परिभाषा है कि कुछ भी नहीं है तो भी काम चल सकता है, कैसी भी परिस्थिति है तो उसमें संतुष्ट रह सकता है। तो ये परिभाषा मतलब कहीं एक 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 सिस्टम बता रहे हैं कि अध्ययन करते हुए आपको ऐसे मेंटल इधर से उधर शास्त्र में जाके ढूंढना चाहिए क्या कहां है और उसको इसके साथ कैसे जोड़ना है। अब एक नेगेटिव स्टेटमेंट प्रहलाद महाराज देते, न का मतलब वो सिद्ध नहीं होंगे, वो सिद्ध नहीं होंगे। कौन से सिद्ध नहीं होंगे? न तथा इंद्रिय प्रिय, जिनको इंद्रियों के विषय प्रिय है वो सिद्ध नहीं होंगे। इसका अर्थ यही है ना, नहीं इंद्रिया प्रिय, पर्सन अटैच टू द सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो क्या प्रिय होना चाहिए? क्या यहां प्रिय किसको बोला है? भगवत प्रियेशो, इंद्रिय प्रियेशो नहीं, भगवत प्रियेशो। तो वो कभी सिद्ध नहीं होगा। कौन सिद्ध नहीं होगा? जो इंद्रियों के भोग में, भोग के पीछे भागता है वो सिद्ध नहीं होगा, और जो भक्तों के संग के लिए तड़पता है उसको तत्काल सिद्धि मिलेगी। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ ठीक है। अब इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? अपनी भाषा में इसका अर्थ करें। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना करें, हे भगवान नरसिंहदेव, ऐसे बोलना चाहिए, प्रार्थना उसको कर रहे हैं, कहीं हमारे को आसक्ति हो तो आपके प्रिय भक्तों में आसक्ति हो, घर पुत्र पत्नी धन में आसक्ति न हो, और हमारा जीवन निर्वाह बस इतने में हो कि जिससे आत्मा शरीर में रह सके और इंद्रिय तृप्ति के तरफ तो हमारा कभी मन जाए ही नहीं, क्योंकि वो कभी सिद्ध हो ही नहीं सकते। ये अपनी भाषा में इसका अनुवाद करेंगे तो ये होगा जो सामान्य है। तो हम अपना अनुभव बताते हैं। एक होती है किताब की भाषा, जो भाषा जो आंख को अच्छी लगती है, जो साहित्य भाषा होती है ना वो आंख को अच्छी लगती है लेकिन कान के लिए नहीं होती। एक बोलने की भाषा होती है जो कान को अच्छी लगती है, और जब साहित्य भाषा बोलने शुरू करेंगे तो कान में जैसे ही जाएगी तो नींद आएगी। किताब खोल के पढ़ेंगे तो सुनने वाला सो जाएगा, ये तो अनुभव सबको है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि वो भाषा कान की है ही नहीं, वो आंख की भाषा है। तो कान की भाषा वो है जो कान को समझ में आए। तो अपनी भाषा मतलब जो बोलने वाली भाषा दूसरी होती है, लिखने वाली दूसरी होती है। तो इसलिए जितना हो सके आम पब्लिक में बोलने वाली भाषा में बोलना चाहिए, जो कान को, कान जिसको एक्सेप्ट करे। तो इसका अर्थ सब बहुत सरल है ना, इसको और कुछ अर्थ पढ़ने की जरूरत है? आप अभी हिंदी ट्रांसलेशन से इसका अर्थ पढ़ के देखो कितना मुश्किल है, पढ़ के देखो। कहाँ हिंदी बुक है कहीं? हाँ नहीं है, कोई बात नहीं। तो अर्थ तो मुश्किल नहीं है, मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, जो समझने उनकी वजह। माय डियर लॉर्ड, देखो इसमें श्लोक में माय डियर लॉर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले से आ रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो चलेगा। हे मेरे स्वामी नरसिंहदेव, वैसे लॉर्ड लिखा है तो ठीक है, लेकिन हमको जब प्रार्थना करनी चाहिए तो सीधा हे मेरे स्वामी नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज ऐसे कहेंगे। ठीक है, हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं आपके चरणों में कि कभी भी हमारी आसक्ति जो आगार, यहां आगार का प्रभुपाद ने एक अर्थ बड़ा अद्भुत लिखा है। क्या लिखा है? जेल खाना। क्या लिखा है? प्रिजन। प्रिजन किसको कहते हैं? जिसमें आदमी फंस जाए तो निकल ना पाए। और प्रहलाद महाराज ने घर को क्या बोला है? अंधकूप। क्या बोला है? अंधा कुआं, जिसमें गिरेगा। क्यों? अंधे कुएं का मतलब क्या है? जिसमें से कोई पानी निकालने आता नहीं है, जो गिरेगा पता नहीं लगेगा। ऐसे पानी वाले कुएं में गिरेंगे, सुबह कोई आए बाल्टी डालेगा तो निकल आओगे ना। हाँ, अंधे कुएं की परिभाषा समझ में आती है। अंधे कुएं का मतलब वो कुआं गांव का जिसमें कोई पानी भरने नहीं जाता है, उसमें गिर गया तो कोई भी नहीं देखेगा। पानी वाले में गिरेगा तो सुबह ही बाल्टी डालते ही पता लग जाएगा कि अंदर कोई बैठा है। तो ये ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गया तो कोई आने वाला ही नहीं है कभी निकालने के लिए, इसमें से कोई नहीं निकाल सकता है। क्या है? प्रिजन ऑफ फैमिली लाइफ कंसिस्टिंग ऑफ, इस आगार में क्या क्या है, घर, पत्नी, बच्चे, मित्र और धन और संबंधी। ये फ्रेंड भी प्रभुपाद ने संबंधी के दो हिस्से कर दिए, जो उसमें है शब्द क्या है, हाँ, बंधुषु, बंधुषों के दो विभाग किए हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वैसे है नहीं, देखे ट्रांसलेशन में दो चीजें की है ना। और इसके बाद इफ आई डू हैव सम अटैचमेंट, ऐसे भी मैं कैसे रह सकता हूं बगैर आसक्ति के, आसक्ति तो करनी ही पड़ेगी कहीं, तो फिर मेरी आसक्ति कहां होनी चाहिए, तो फिर ऐसे भगवान के भक्तों में जो भगवान श्री कृष्ण जिनका मित्र है। प्रभुपाद ने क्या लिखा है, जिनका भगवान श्री कृष्ण मित्र है, कृष्ण इज फ्रेंड ऑफ दोज वर, क्या लिखा है, हाँ, whose only dear friend is Krishna, only dear friend is Krishna, कितना पर्सनल है। अब only dear friend of is Krishna और आत्मवान और निर्योग क्षेमवान, इन सब चीजों का आपको प्रभुपाद जी का अपना अनुभव देखना है तो भगवत गीता 18वां अध्याय 58 श्लोक 58 और उसका परपट पढ़ो तीसरी लाइन से, क्या 1858 मत प्रसादात तरश्यसी, जिसमें है सर्व दुर्गाणी मिला, पढ़ो तीसरी लाइन में क्या लिखा है,
फॉर वन हू एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लॉर्ड कृष्णा बिकम्स द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड।
क्या लिखा है यहां प्रभुपाद ने, Only friend is Krishna, ऐसा भक्त चाहिए जिसका सिर्फ फ्रेंड कृष्ण है। ये प्रभुपाद का अपना रियलाइजेशन है। पढ़िए आगे,
He always looks after his friend's comfort.
कृष्णा ऑलवेज लुक आफ्टर द कंफर्ट ऑफ हिज नीड्स, नहीं, ये प्रभुपाद का इस्कॉन स्थापना के बाद दिखाया कि कृष्ण कंफर्ट फ्लाइट के टिकट से लेकर हेलीकॉप्टर तक प्रबंध करता है। कंफर्ट शब्द को जरा ध्यान से देखना चाहिए। सामान्य कहते हैं भगवान नीड पूरी करती है, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा फ्रेंड, कृष्ण बिकम्स इंटीमेट फ्रेंड एंड ही लुक आफ्टर द कंफर्ट ऑफ हिज डिवोटी, ऑफ हिज फ्रेंड। क्या लिखा, अब ये जो यहां फ्रेंड लिखा है प्रभुपाद ने, ये जो प्रभुपाद की राइटिंग है, ये हिज ओन पर्सनल रियलाइजेशन कि हाउ कृष्ण रेसिप्रोकेट विद हिज डिवोटीज। और आगे देखो, कृष्ण गिव्स हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड एज एग्जाम्पल, एज ही हैज गिवन हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड अर्जुन, सारथी बन जाता है, उसका सारा संचालन चलाता है, सारी समस्याओं को देखा है। सो कृष्ण है गिव हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड, लेकिन लास्ट लाइन बहुत भारी है। प्रभुपाद कुछ लिखते हैं, पहले ऐसे लगता है बहुत इजी है, लेकिन लास्ट लाइन पढ़ो, हम ये परेशानी है। हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लास्ट लाइन बहुत भारी है। अब देखा ना, डिवोटेडली एंगेज 24 hours a day इन हिज सर्विस। एक जगह प्रभुपाद ने कहा, दोज हु डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स दे विल गो बैक टू गॉड, नीचे लिखा थ्रू आउट देयर लाइफ। तो भगवान तो बस मित्र ही बन जाएगा, आपकी सारी कंफर्ट देखेगा, लेकिन 24 घंटे भगवान के अलावा इधर उधर कहीं नहीं देखना है, कहीं और सोचना नहीं है। तो ये जो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम, वन हुज ओनली फ्रेंड इज कृष्ण, ओनली फ्रेंड इज कृष्ण, तुमेव बंधु तुमेव सखा, एव शब्द जो संस्कृत का है बहुत छोटा है लेकिन बहुत ताकत वाला है, आपके अलावा और कोई नहीं, एव का मतलब एक्सक्लूसिव अनन्य। तो ये प्रभुपाद, वो जिसका केवल, अगर मेरी आसक्ति तो उनसे हो जिनका केवल कृष्ण ही जिनको मित्र है, प्रिय है। और फिर ये हुआ एक ए पर्सन हु इज एक्चुअली सेल्फ रियलाइज आत्मवान एंड हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड, ये आत्मवान के दोनों अर्थ है, एंड इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विद द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ही डज नॉट ट्राई टू ग्रेटिफाई द सेंसेस। सच ए पर्सन क्विकली एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब सिद्ध्यति, एकदम सिद्ध हो जाएगा। और नॉट, अभी नेगेटिव साइड, अदर्स हु आर टू अटैच टू द मटेरियल थिंग्स फाइंड एडवांसमेंट वेरी डिफिकल्ट। भौतिक चीजों में ज्यादा आसक्ति में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहद कह दिया कि एक चीज क्या है जिसमें कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वैष्णव का क्या आचार होना चाहिए, तो महाप्रभु ने क्या कहा इमीडिएटली, असंग असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, असंग असंग त्याग। अब आपका वापस बोला ये क्या सत्व इस्तो मतलब असत संग त्याग, सत्व में स्थित है हमेशा, तो असत संग का त्याग करें। तो असत क्या है, पहली लाइन असत है, असत क्या है, ये श्लोक की पहली लाइन असत है, क्योंकि महाप्रभु की परिभाषा में असत ये है वो लोग जो इन चीजों में आसक्त है उनसे दूर रहो। असत संग त्याग, तो असत क्या है, असत क्या है महाप्रभु के शब्दों में, ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं है, और अति अधिक भौतिक चीजें, और भौतिक चीजों में ये सब पहली लाइन के बैंक बैलेंस, बच्चे, घर, गृह, ये सब लिखा है। प्रहलाद महाराज भी ऐसी ही प्रार्थना करते हैं सातवें स्कंद में कि भगवान के भक्तों का अभक्तों का संग न मिले। और सारी भागवत में बार बार एक ही प्रार्थना की गई है, भगवान आपके भक्तों का संग मिलना चाहिए। भगवान के दर्शन के बाद भी भगवान के भक्तों के संग का महत्व बताया गया। प्रहलाद महाराज को तो द्रु महाराज को भगवान का दर्शन हो गया ना, फिर द्रु महाराज राजा हो गए ना, फिर उत्तम मर गया तो लड़ाई करने लगे ना, सबको मार रहे थे ना, तब जरूरत पड़ गई स्वयंभू मनु आके शिक्षा देने की, तो वह स्वयंभू मनु क्या है, 12 महाजनों में एक महाजन है ना, उसके संग की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, भगवान के दर्शन के बाद भी जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। अब बलि महाराज आत्मनिवेदन का भक्त है, लेकिन उसको भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा इसको जाओ सूतल लोक में संग दो। पृथु महाराज के सामने भगवान विष्णु आके खड़े हो गए कि मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन फिर भी चार कुमारों से उपदेश लेने की आवश्यकता पड़ गई। परचेता तो शंकर से दीक्षा लेके भगवान विष्णु का दर्शन करके लौट के आए, फिर भी क्रोध आ गया, फिर भी वापस आके नाराज ना। तो इसका मतलब भक्तों का संग तो भगवान को मिलने के बाद भी अति आवश्यक है। इसलिए कौन सा चेतना चरितमृत का श्लोक कोट करना चाहिए, भक्त जन्म हिते भक्त संगे, फिर भक्ति का जन्म ही भक्त के संग में होता है, और भक्ति हो मिल भगवान मिल जाए सिद्धि हो जाए तो भी भक्त संग मुख्य अंग, लास्ट लाइन है भक्त संग मुख्य अंग, मतलब सिद्धि के बाद भी भगवत प्राप्ति के बाद भी भक्त का संग मुख्य अंग है। तो पांच चीजें जो भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण महाप्रभु ने कही है, अगर नाम लेके कहेंगे तो भागवत के शब्दों के अर्थ का रस आस्वादन करना, जो एग्जैक्ट वर्ड है भागवत शब्द अर्थ रस आस्वादन, श्रद्धाया श्री अर्चा विग्रह पूजन यजन, श्रद्धा से भगवान के पूजा करना, तीसरा भगवान के धाम में निवास, और चौथा नाम जप, पांचवा भक्तों का संग। इन पांच में सबसे मुख्य क्या है, भक्तों का संग, पांचों में मुख्य है भक्तों का संग। भक्तों के संग में नाम जप करना, भक्तों के संग में धाम में जाना, भक्तों के संग में पूजा करना, भक्तों के संग में भागवत पढ़ना, सब में मुख्य भक्तों का संग है तो बहुत दुर्लभ। ये सब भी पूरी भागवत में बार बार ये कहा गया है कि कुछ भी हो, कहीं भी जाएं, भक्त भगवान आपके भक्तों का संग मिलना चाहिए। तो दुर्लभ केवल एक ही चीज है, भगवान के भक्तों का संग दुनिया में। तो इसके लिए महत्व प्रभुपाद जी कहते हैं तो ये असंग से बचाना हमको, ऐसे प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं। अभी मानो आप यही श्लोक के ऊपर कांग्रीगेशन में ग्रस्तों को प्रचार कर रहे हो तो क्या कहना पड़ेगा आपको? बहुत बड़ा समस्या का श्लोक है ना। हाँ, तब मैं आपको प्रचार के लिए एक विधि बताता हूं। आपको श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा ही एक श्लोक ज्ञान की परिभाषा में पुत्र ग्रह आदिशु है, भगवद गीता के 13वें अध्याय में जहां ज्ञान के लक्षण है 18, वहां भी पुत्र ग्रह आदिशु है और वो बंधन का कारण है, ये ध्यान में है। वहां परपट में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में चार चीजें लिखी है, याद है किसी को चार चीजें? गृहस्थ के घर के अंदर भगवान का श्री विग्रह स्थापित हो और भगवान के लिए भोग लगे रोज, सब रसोई में बने वो, गीता भागवत का अध्ययन पाठ हो और भगवान के नाम का कीर्तन हो। ये चार चीजें जिस गृहस्थ के घर में होती है वो बंधन का कारण नहीं होता है, फिर वो भगवान की भक्ति का सहयोगी होगा। तो आपको प्रचार में ये दूसरा एस्पेक्ट भी तत्काल निकाल के प्रभुपाद के तात्पर्य से देना चाहिए उनको कि आपके घर में ये चार चीजें हैं तो आपको बंधन से मुक्त है, लेकिन चार चीजें होनी चाहिए। और हमने अनुभव करके देखा एक्सेप्ट 1% छोड़ के, अब कुछ दिनों से हम रोज यही कहते हैं, हर घर में रोज कम से कम आधे से घंटे से ज्यादा कीर्तन करो, कोई नहीं करता है कीर्तन घरों में, घरों में कीर्तन नहीं हो रहा है। मंदिर में कैसे भी आपको 2-3 आरतियों में कीर्तन तो करना ही करना है, सुबह मंगल आरती में कीर्तन करना है, फिर गुरु पूजा में कीर्तन करना है, फिर संध्या आरती में जो जाते हैं उनको कीर्तन के, घरों में कीर्तन नहीं हो रहा है। और इसलिए सारे घर वाले परेशान है कि बच्चे जप नहीं आए, बच्चों से जप नहीं होगा लेकिन बच्चे कीर्तन करेंगे, वो फिर कटोरी लाएंगे, चमचा लाएंगे, बजाएंगे लेकिन कीर्तन में आएंगे। बच्चों को आप देखो उनका स्वभाव है लेकिन माला उनका काम नहीं है, लेकिन कीर्तन सब घरों में होना चाहिए, ये उनको मुख्य। आपको घर के बंधन से मुक्त होना है तो सबसे ज्यादा अपने घर में रोज कम से कम एक समय आप घड़ी रख के आधा घंट कीर्तन करने का नियम बनाओ, ये बहुत मुख्य है। ग्रस्तों के कांग्रीगेशन के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है, और कीर्तन के बाद ही सबको प्रसाद मिलेगा, बच्चों को बड़ों को कीर्तन करेंगे उसके बाद ही प्रसाद मिलेगा, और ये दो ही तो साधन है जिससे कृष्ण भावना का विश्व भर में प्रचार हुआ है, कीर्तन और प्रसाद। तो वो घर के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए ये बहुत मुख्य है। और अब कुछ दिनों से हम तो सब ग्रस्तों को यही कह रहे हैं कि हम सबके घर में जाते हैं कीर्तन छोड़ के, सब है माला उठा के हर एक अपने कोने में उधर मुंह करके बैठा, उधर मुंह करके बैठता है, लेकिन कीर्तन में सब साथ बैठते हैं, प्रसाद में साथ बैठना चाहिए। तो ये दो बहुत मुख्य अंग हैं। तो ये चार चीजें होने से घर बंधन का कारण नहीं है, ये प्रभुपाद का तात्पर्य कांग्रीगेशन के प्रचार के लिए नोट करके रखना चाहिए। जब भी ऐसे श्लोक होते हैं तो ये कहना जरूरी है। और ब्रह्मचारियों को निश्चित रूप से इन श्लोकों को इतना सीरियस लेना चाहिए कि अगर किसी तरीके से भगवान ने हमको बचाया है अच्छे संग से तो फिर हम काय के लिए जेल में जाएं, काय के लिए जेल में जाएं। ये बहुत सावधानी से इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बैलेंस है। देखो कि भगवान के अवतार कुछ गृहस्थ में है तो बहुत बड़े वृक्त भी नर नारायण आज तक तपस्या कर रहे हैं, और लक्ष्मी देवी तो बेर का पेड़ बन के छाया दे रही है, सेवा कर रही है, लेकिन अभी तक तपस्या कर रहे हैं नर नारायण। और नर नारायण भारतवर्ष के आधा आराध्य देव है, और ये तपो देव्यम की भूमि है, ये भारतवर्ष तपस्या की भूमि है। तो आपको अगर ब्रह्मचार्य बहुत से बड़ा तप है जिसके अंदर, तो केवल श्रवण करना है, श्रोत श्रवण की इंद्री के अंदर हवन करना है, सारे इंद्रियों के भोग का, तो जितना अधिक कथा का श्रवण होगा उतना इंद्रियों के भोग से ज्यादा बचेंगे। तो आपको तो सावधानी से, छोटा सा जीवन है, लगता है 50-60 साल, लेकिन एटर्निटी से कंपेयर करेंगे तो एक सेकंड भी नहीं है, इज नथिंग है। लेकिन इसको किस तरीके से अगर कोई संभाल पाता है तो बड़ा भाग्यशाली है। ये बहुत रेयर है, सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आत्मवान बने रहिए, आत्मवान बने रहिए, इसके ऊपर दृढ़ संकल्प करके बैठ जाइए। अब श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान का भक्त कभी भी इंद्रियों के और शरीर के जरूरतों को बढ़ाता नहीं है। तब कौन सा उदाहरण आपको देना चाहिए तत्काल प्रभुपाद की टीचिंग से? साधु जो तपस्या कर रहा था और लंगोट डबल वाली शुरू कर दी तो वापस जेल में आया कि नहीं आया? हाँ, वो एकदम एक लाइन देख के आपको उस तक देखना चाहिए, यहां क्या कहना चाहिए, यहां वो उदाहरण देना चाहिए कि थोड़ी सी आसक्ति कैसे बंधन का कारण बनती। थोड़ी सी आसक्ति एक के बाद दूसरे, एक के बाद तीसरे, फिर तो प्रोसेस चालू हो जाएगा। इसलिए कोई नहीं कि मिल जाए कभी प्रसाद तो उसको ऑनर करना चाहिए, और नहीं मिले तो आज भगवान ने चाहा मैं उपवास कर लूं। उपवास का अर्थ क्या है? भगवान के पास में बैठूं। उपवास मतलब संसार से ऊपर उठ के भगवान के पास वास करूं बैठ के। तो आज भगवान की इच्छा है उपवास कर लो, तो उसको ऐसे आत्मवान की परिभाषा ये है। ऐसी स्थिति में आज भगवान की इच्छा है उपवास कर लूं, क्या है, ठीक है, तो उसमें उस संतुष्टि भगवान को अच्छी लगती है। तो यहां यह लिखा है कि अननेसेसरी, अब हमारी आवश्यकताएं इतनी हो गई, कोई सेवा के लिए कोई चीज लेते हैं लेकिन फिर उसके लिए भी इसको चार्ज करना है, इसको संभालना है कि फोन है ये, इनके लिए भी इतनी परेशानी है। इसलिए हमारी भाषा में हम बोलते हैं, ब्रह्मचारी भले शादी न करे लेकिन उसका बच्चा हमेशा उसकी जेब में होता है मोबाइल। जब चाहे कोई फोन आए तो बेचारे को प्रेम करें, हाँ बेबा। और भूखा होएगा तो वायर लगाएगा, उसको फीडिंग करेगा। और कितने भी कितनों के मोबाइल हो, उसके मोबाइल की रिंग बजेगी तो अपने बच्चे के रोने को एकदम पहचान लेगा कि मेरा रो रहा है। तो ब्रह्मचारी भी बेचारा नहीं विवाह करते हुए भी मोबाइल ये नोकिया कंपनी ने भेज के बच्चा सबको, और फिर दूसरी कंपनी ने कहा ये शादी नहीं करेंगे, इनको कंप्यूटर दे देते हैं, सारा दिन मुख देखते रहेंगे और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, इसमें पासवर्ड डाला हुआ है, ताला लगाया हुआ है इसको। तो ये ब्रह्मचारी की संतुष्टि, ये कंप्यूटर जो है वो घर वाली है और मोबाइल बच्चा है। कभी कभी आदमी 6-6 घंटे कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, कुछ ही अच्छे काम के लिए बैठे हैं, लिखे पढ़े वो तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा है कुछ ना कुछ पाप करता रहता है उसमें, ऐसे वो भी बदमाश पहले नंबर का है। पापा यू आ गया है। अब नहीं करो तो भी कुछ ना कुछ आता, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए भी सावधानी। प्रचेताओं की तरह 10 ब्रह्मचारियों का एक कंप्यूटर होना चाहिए। तो फिर दक्ष जैसा पुत्र कोई पैदा होगा, अच्छा पुस्तक निकल के आएगा बाहर। नहीं, इसका पॉजिटिव यूज करना चाहिए भाई। प्रचेता 10 को एक ही, वो अक्षनी क्या उसका नाम था, वन कन्या मारीशा, चंद्रमा ने दिए थे इस तरीके से, या पांडवों की तरह पांच के पास, कम से कम पांच पे एक, पर उसमें लड़ाई का संभावना है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। A devotee is not interested in unnecessary increasing the demands of the senses for gratification. Of course, as long as one is in this material world, one must have a material body, and it must be maintained by executing devotional service. This body can be maintained very easily by eating Krishna prasad. अब प्रभुपाद कहते maintenance के लिए सिर्फ चाहिए प्रसाद, और तब भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये श्लोक लिखा है कि भगवान का प्रसाद खाओ और हरि के गुण गाओ। अब दूसरा श्लोक, मेरे ख्याल 15 मिनट बचे हैं हमारे पास, हम 11वां श्लोक पढ़ लेते हैं। अब कोई प्रश्न पूछे प्रहलाद महाराज से, घर छोड़े, गृहस्थी छोड़े, परिवार छोड़े, भक्तों के पीछे जाए, मिलेगा क्या? तो क्या मिलेगा भक्तों के संग में? तो ये श्लोक है कि भक्तों के संग में क्या मिलेगा। भक्तों के संग का लाभ में ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना में कहा है, पढ़िए। यत संग लब्धवम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मोहसंस प्रशताम हि मानसम हरत्य अजो अंतः श्रुतिभि गतो अंगजम को वै न सेव्येत मुकुन्द विक्रमम। अब भक्तों के संग में क्या मिलेगा? यत संग लब्धवम, अगर ऐसे भक्तों का संग मिल गया, लब्धवम का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज गुम हो जाए और मिले उसको कहते हैं लभा। लभने का मतलब क्या है? पहले थी, ऐसा नहीं, इसका मतलब हमेशा इस धरती पे भक्त होते हैं। लब्धवम का ऐसे अनुवाद समझना चाहिए, भाई मेरे को मिल गया, इसका मतलब पहले लब्ध, लब्धवा का मतलब है कि एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मुझे मिला नहीं है, अब मुझे मिल गया। तो ये कि कभी भक्त इस दुनिया में होते नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। ऑलवेज देर आर प्योर डिवोटी ऑन द प्लैनेट, ऐसे नहीं है कि भक्त इस धरती के ऊपर नहीं होते। तो यत लब्धवम, यत लब्धवम, यत लब्धवम, यत संग लब्धवम, मुख्य शब्द क्या है? उनका संग मिल जाना है, तो बहुत सारे लेकिन संग नहीं मिलता है। आप रहते हैं इधर ही, आपके पास भक्त है लेकिन संग नहीं मिल रहा है। संग क्या, भक्त के संग की परिभाषा क्या है? बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, ये भक्त संग, जहां हरि कथा मिले। भक्त के संग से क्या मिलेगा? हरि कथा। भक्त का संग हरि कथा देने वाला है। ऐसा नहीं है कि भक्त के साथ बाहर जाके घूम फिर के आ गया तो यू भक्त का संग, वो संग नहीं, संग माने हरि कथा। भक्त संग का मुख्य उद्देश्य है बोधयंत परस्परम कथ्यंत। भक्त के संग का उदाहरण किसी को ऐसे कभी दो तो उद्धव और विदुर का मिलन जो गंगा जमुना जी के तट पे हुआ है, ये भक्त संग है। एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा कर रहे और कोई चर्चा नहीं। उद्धव तीन अध्याय पूरे कृष्ण कथा उद्धव और विदुर जो बोलते हैं, ये है बहुत सुंदर भक्तों के संग का उदाहरण। ऐसा संग होना चाहिए। ऐसे संग में तुष्यंती च रमंती च, आदमी संतुष्ट रहेगा और आनंद में मगन रहेगा, उसको कुछ और चाहिए नहीं। तो भक्त का संग मिल जाए, भक्त के संग में भी डिस्क्रिमिनेशन है। रूप गोस्वामी की शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन है। कौन से भक्त के संग करने के लिए रूप गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं? क्या एक मुख्य शब्द कहो जो की वर्ड है? सजातीय, ठीक है, बस ये एक शब्द जिसको समझ में आ जाए वो भक्त संघ की माना है, निंदा आदि शून्यम। क्योंकि कभी भी हम भक्तों के पास बैठते हैं तो दूसरे भक्त की निंदा पहले करते हैं, वो भक्त संघ का विरुद्ध है, बिल्कुल उसके उल्टा है। किसके संघ से लाभ होगा? निंदा आदि शून्यम। जिसके जिसके जबान पे किसी और की निंदा का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, उसके संग से हमें लाभ होगा। ऐसे ज्यादा से ज्यादा भक्त संग करते यही पूछने के लिए उसने क्या किया, उसका क्या हुआ, अच्छा वो ऐसे कर दिया, बस यही कथा चलती रहती है प्रायः। तो निंदा आदि शून्यम जो वो की वर्ड है उस पूरे वर्ष का, शास्त्र कितना आता है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन निंदा किसी की नहीं करता है, यह सबसे बड़ी बात। क्या निंदा करने में नुकसान क्या है? भाई निंदा करेंगे तो क्या होगा? भाई निंदा का मतलब क्या है? किसी के अंदर दुर्गुण, किसी के अंदर कोई अवगुण देखना, उसके अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। आप किसी की निंदा करेंगे तो वो अवगुण उससे उसको छोड़ के आपके पास आ जाएंगे। बोले ये मुझसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उसके पास बैठ के क्या करें वो समझेगा यही हवाले अच्छा ग्राहक है। सुन, निंदा आदि शून्यम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हम जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप हम खरीदते हैं मुफ्त में, उसके दो सारे दोष हमारे पास आते हैं, पाप भी उसको हमको हमारे को उठाने पड़ते हैं। सो निंदा आदि शून्यम भक्त संघ का जो है की वर्ड है। कितने प्रकार के भक्त हैं तीसरे स्कंद भागवत में? तीनों गुणों के अंतर्गत 81 प्रकार के भक्त हैं। नवदा भक्ति और तीन गुणों का विश्लेषण करेंगे तो तमो और रजोगुण का जिसको प्रभाव है उसको दूर से नमस्कार करना चाहिए, कम से कम सतोगुण वाले भक्तों का संग करना चाहिए। तो भक्तों के संग में भी बहुत बड़ी सावधानी है। यत संग लब्धवा निज वीर वैभवम तीर्थ मोह, निज वीर वैभवम, प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड में लिखा है, हूज इन्फ्लुएंस इज अनकॉमन, निज वीर वैभवम। इसका एक शब्द में अर्थ है कि ऐसा भगवान, ऐसा भक्त भगवान की विभूति है। निज मतलब भगवान का, वीर वैभवम माने भगवान की विभूति है। हमारा अनुभव हम बोलते हैं, दसवें अध्याय का नाम क्या है भगवद गीता में? विभूति योग। और सबसे विलक्षण विभूति भगवान की क्या है? भगवान का भक्त चतुर्श्लोकी में। क्योंकि भगवान की विभूति की परिभाषा क्या है? विभूति किसको कहते हैं? जिसको देख के आप एकदम कहो ओह माय गॉड, भगवान याद आए, उसको विभूति बोलते हैं। विभूति है जिसको देख के भगवान याद आए। और चेतन महाप्रभु ने क्या कहा है? वैष्णव वो है जिसको देखकर भगवान याद आए। तो भगवान भक्त को देखकर भगवान याद आता है या किसी और? शेर को देखकर भगवान याद आएगा क्या? है तो विभूति शेर भी, कितने उन्हें देखा है जाके, रोज कोई देखता है क्या? रियल विभूति भगवान की उस अध्याय में है, भगवान का भक्त। जो चतुर्श्लोकी भागवत है वो भगवान के भक्त की महिमा है और भगवान का उसके साथ जो आदान प्रदान जो रेसिप्रोकेशन है वो है, वो सबसे बड़ी विभूति है। तो निज वीर वैभव का मतलब भगवान की भक्त विभूति हैं, आपको भगवान की याद दिलाएंगे, वो अब आपको भगवान याद दिलाएंगे। इसलिए बार बार हम कहते हैं भक्तों का संग करके मैत्री करना क्यों जरूरी है? अंत समय भगवान याद आ जाए सबको अथवा ऐसा स्वस्थ रहे, ये संभव नहीं है। कभी ऐसी अवस्था सबके ऊपर आनी है, उस वक्त आपके भक्त जिनके साथ आपकी मैत्री है सब काम छोड़ के आपके चारों ओर बैठ के आपको भगवान की याद दिलाएं, इसके लिए भक्तों के साथ बहुत निकट की मैत्री होनी चाहिए कि अंत समय आपको भगवान याद दिला सके। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रैक्टिकली हमने देखा है वृंदावन में ऐसे भक्तों के लिए बहुत बड़े बड़े व्यस्त महाराजों ने अपने टिकट कैंसिल करके 5-7 दिन कीर्तन करके ऐसे भगवान की याद स्मृति करा के उनको वापस धाम जाने में सहयोग किया है। तो ये असल में मुख्य है, निज वीर वैभवम का मतलब है ऐसे भक्त मेरी विभूति है जो आपको भगवान की याद तत्काल दिलाएंगे। उसके कंपेरिजन में ये तीर्थ हैं, इसमें बार बार जाके स्नान करने से भी पवित्र होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे भक्त उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीर्थ का जो इसके पीछे वाला है वो कंपेरिजन है तीर्थ से। तो तीर्थ गंगा तो आखिरी वक्त में कोई आपके मुंह में डालेगा तभी पड़ेगी, लेकिन भक्त कान में जो डालेगा राम नाम वो एकदम उद्धार करने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भक्त का संग है। निज वीर वैभवम के बाद क्या लिखा है, तीर्थम मोह संग स्पृशम इति मानसम। तीर्थ में बार बार जाके स्नान करने के बाद भी मन के अंदर से वासनाएं नहीं जाते, बात शरीर ही पवित्र होता है प्रायः। हरत्य अजो अंत, लेकिन अजो अजन्मा भगवान जो है जिसकी कथा भक्तों के से सुनेंगे, हरत्य अंत स्थिति भी गतो अंग, हृदय के अंदर में जो मैल है वो एकदम ये अजन्मा भगवान जिसकी कथा सुनेंगे वो नाश कर देगा। प्रभुपाद ने दो श्लोक भावार्थ में कोट किए हैं। एक पहला श्लोक कौन सा, श्रोणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्ण हृदय अंत स्थान या भद्राणी धुनोती स्वर्द सता। और दूसरा श्लोक कोट करना है तो कौन सा करना चाहिए, श्रोणताम श्रद्धा नित्यम गृणत स्वचे स्थितम काले नति दीर्घेण भगवान हिस्ते अविशते हृदय प्रवेश कर्ण रंध्राणाम स्वानाम सरोरवम धुनोती शमलम कृष्णा यदा श्रद्धा। भगवान उसका अजो उसका मैल धोता है। किसका मैल अज धोता है, जिस जो कथा सुनाएगा। भक्त क्या करेगा, कथा सुनाएगा और कथा के माध्यम से कान से भगवान अंदर जाके और भक्त के हृदय का मैल धो लेंगे। तो ये भक्त भगवान का वैभव है, भगवान की याद दिलाएगा, भगवान की कथा सुनाएगा और भगवान हृदय में जाकर अंतःकरण की शुद्धि करेंगे। अंतःकरण, अंतःकरण किसको कहते हैं, अंदर की अंदर की इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां हाथ आंख कान नाक, ये बाहर की इंद्रियां। इसको तो रोज साफ करते हैं, मुंह धोते हैं, पेस्ट करते हैं, साबुन लगाते हैं, ये तो हुई बाहर की इंद्रियों का मार्जन। अंदर की इंद्रियों का मार्जन करने के लिए कौन सा साबुन है। अंतःकरण की शुद्धि के चैतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो अंतःकरण की शुद्धि भगवान करेगा, हम नहीं कर सकते। उदाहरण देना हो तो को बच्चे के जन्म लेते हुए मां साफ करती है, बच्चा अपने आप को नहीं कर सकता। ऐसे भक्त छोटा बच्चा है, भगवान उसको धो के साफ करते। अपने आप को भक्त साफ नहीं कर सकता, भगवान करता है। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स किसको कहते हैं, गाय के बछड़े को, नवजात बछड़े को गाय चाट के साफ करती। ऐसे भगवान अपने भक्त के सारे दोषों को चाट के साफ करते हैं जैसे गाय करती है, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। तो भगवान अंतःकरण की शुद्धि कर देते हैं जिसका और कोई साधन नहीं है। एक सिंध का संत है, वो रोज गाते हैं, नाम तुम्हारा साबुन कर सा धोसा पाप सबे ही, भगवान तेरे नाम का साबुन बना के सारे पाप धोएंगे। वो ऐसे गाते रहते हैं, मैं उसको सुनता हूं। अच्छा भाव है कि भगवान का नाम अंदर को साफ करने का सबसे उत्तम साधन है। तो यहां तीसरी लाइन में क्या आया, चौथी में, को वही न सेवियत मुकंद विक्रमम। फिर कौन ऐसा मूर्ख है जो मुकंद, जिसके कार्य अद्भुत है, विक्रमम बड़े भारी कार्य है जिसके। कैसे भारी कार्य, पापी को भी नाश करे। कितने भारी कार्य है, कितना भारी उसके कार्य है, पाप के पेट में गए हुए को भी जीवित निकाल के और पाप से मुक्त करके देता है, ऐसा ये विक्रम कार्य है। अघासुर का मतलब क्या, पाप का पुंज। उसके पेट में सब मित्र चले गए कि नहीं चले गए, उसके अंदर से निकाल के लाया, ये है विक्रम कार्य, पाप के पेट से निकाले। देखो कोई पाप करे उसको दंड मिले, वो नहीं कह सकता है मैं दंड छोड़ता हूं। आपको पुरस्कार मिले आप छोड़ सकते हो, आपको कोई कहे कि तुम्हें पुरस्कार भाई नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन पाप मिले थोड़ी छोड़ सकते हो। तो पाप तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन यहां तो पाप के पेट में गए उनको भगवान वापस निकाल के लेकर आए। तो इसको बोलते हैं विक्रम, जिसके कर्म बहुत अद्भुत कर्मणा। तो ऐसे विक्रम मुकंद को छोड़ के, मुकंद मुक्तिदाता, और भी कुछ अर्थ है मुकंद के, अभी नहीं आते, मेरे ख्याल टाइम पूरा हो गया आपकी सेवा का। तो इस श्लोक के तात्पर्य को आप पढ़ लीजिएगा, प्रभुपाद ने यही अंतःकरण की शुद्धि के कुछ श्लोकों का उदाहरण दिया है, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु। तो ये पूरे का पूरा जो भक्ति प्रोसेस है प्रभुपाद ने दिया है, ये भक्तों के संग से कथा, कथा से निष्ठा, निष्ठा से फिर तमोगुण रजोगुण जाएगा, फिर शुद्ध सत्वगुण आएगा, ऐसे पूरा जो दूसरे अध्याय में भक्ति की प्रक्रिया है उसका प्रभुपाद ने तात्पर्य में दे दिया है। तो इन शब्दों के पास आज इस कथा को पूरा करते हैं, कल सुबह की क्लास में इसके बाद वाला 12वां श्लोक हो जाएगा ना, हाँ 12वें श्लोक को लिखेंगे। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। क्वेश्चन और कमेंट?